أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم لیکچر نمبر 27 لیکچر نمبر 27 پڑھیں گے، پیج نمبر ہے 232. اب تک ہم نے موٹی موٹی ساری باتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ موٹی موٹی باتیں کیا پڑھ لیں کہ ہم موٹی موٹی باتیں ہم نے یہ پڑھ لیں کہ ایک ذات ہے، اس نے کچھ صفات اپنائیں اور وہ صفات کا مظاہرہ کائنات کے پروگرام کی صورت میں ہونا شروع ہو گیا. اب یہ سارا پروگرام اور یہ نظام کیسے چلا، تو وہ صفات کے حوالے سے پتا چلا کہ ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں بنایا گیا. یہاں ہر چیز جوڑا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے سوا جو بھی خلق ہے. خلقناکم، تم کو بنایا. یہ جتنی تخلیقات ہیں، یہ شرط تخلیقات کے لیے ہے. کئی دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ پر یہ کہہ رہے ہیں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، تو اللہ کا جوڑا کیا ہے؟ توبہ، نعوذ باللہ. تو اس لیے یہ بات واضح ہے، میں نے لفظ پڑھے قرآن کے کہ خلقناکم، تم کو تخلیق کیا. یعنی تخلیقات پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ جوڑوں میں ہے، اور سب سے بڑی تخلیق ہے ٹائم اینڈ سپیس، پھر باقی جوڑا در جوڑا در جوڑا، پھر حواس کے جوڑے، پھر ان سارے نظام کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں ہیں. ان تین چیزوں کو یعنی روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی کہا گیا. پھر اس کے بعد ہیں چار چیزیں، اور وہ چار چیزیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ ہیں وہمہ، خیال، تصور اور احساس. پانچ جو ہیں یہ حواس ہیں، پھر ان کی قسمیں ہیں، ان کی رفتاریں ہیں، حواس سے کام لینا ہے. چھ یہ ہمارے وہ تنزلات ہیں، یا وہ جو شخص اصغر کے تحت تین عالم خفیف ہیں اور تین عالم شدید ہیں، انہی کو ایام ستہ تے ایام کہا ہے. یہ چھ بناوٹیں ہیں جن کے بارے میں ہم سارا کچھ یہ پڑھ کر آ رہے ہیں. اور سات جو ہیں یہ درجات ہیں، ان ساتوں درجات کے شعور کو سب سماوات اللہ نے کہا ہے. یہاں تک تو ہم نے یہ موٹی موٹی باتیں، خلاصہ میں نے آپ کو چند جملوں میں عرض کر دیا کہ ایک کیا ہے، دو کیا ہے، تین کیا ہے، چار کیا ہے، پانچ کیا ہے، چھ کیا ہے اور سات کیا ہے. یہ ایک سے سات تک کی گنتی ہے. یہ خلاصہ ہو گیا جو کچھ ہم نے پڑھا. اب اس پروگرام کا نزول دیکھیں نا، پیچھے کشش اور گریز آیا، پھر یہ پانی کے اندر یعنی صفات کے اندر ساری انواع موجود ہیں. یہ چار چیزیں آپ کو بتایا گیا کہ بھئی فرد ہے، نو ہے، پھر کائنات ہے، پھر ورائے کائنات ہے. یہ چار چیزیں، تو یہ سارا کچھ بتا کر اب اس کا جو آرڈر ہے ڈسینڈ اور اسینڈ کا، یعنی نزول اور صعود، نزول اور صعود. جب کوئی تلا اوپر سے نیچے کو نزول کر رہی ہوتی ہے، وہاں سے گریز کر کے نیچے کو آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک زون سے گزرتی ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. یعنی اطلاع کو اتنی ڈیٹیل میں قرآن نے بتایا. یہ برزخ اور اعراف کے الفاظ قرآن کی اصطلاحات ہیں. تو اس لیکچر کا عنوان ہے برزخ و اعراف. تو یہ جب نیچے کو نزول کر رہی ہے تو جو سٹیشن اس مادی زون سے اوپر آتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. اب برزخ کا لغوی مطلب پردہ ہے. اور جب ہم یہاں سے واپس صعود کرتے ہیں، دنیا سے اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں، تو وہی سٹیشن اب اعراف کہلاتا ہے. کیونکہ جیسے اوپر سے آتے ہوئے ہمارا جسم مثالی بنتا ہے، اسی طرح یہاں سے جب ہم مادی لباس اتار دیتے ہیں تو واپسی پہ ہمارا جسم مثالی जिस स्टेशन पे होता है, जिस मुकाम पे जाता है, उस हालत को या उस मुकाम को एराफ कहा जाता है। तो ये पेज नंबर जी 232 पे हम आगाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जब गुनागुन और बेखबरी की सूरत को खत्म करना चाहा तो कायनात को मुखातिब किया। जैसे ही कायनात की समाअत से अल्लाह ताला की आवाज टकराई, समाअत की हिस पैदा हो गई। समाअत में हरकत पैदा होने के बाद कायनात में किसी तरफ मतवज्जो होने की सलाहियत बेदार हो गई, यानी सलाहियत उसके अंदर मौजूद थी। यानी कुन कहकर कायनात तखलीक की, लेकिन वो बेखबरी की हालत थी तो मुखातिब किया अलस्तु बिरब्बिकुम कहकर। जैसे ही अल्लाह की आवाज कायनात की समात से टकराई, यानी उसको एक स्क्रीन मिल गई, एक टारगेट मिल गया, तो समात की हिस पैदा हो गई। और समात में हरकत होने के बाद कायनात में किसी तरफ मतवज्जो होने की सलाहियत बेदार हो गई। अब देखिए, ये सारी बातें हमारे आपके मुशाहदे में हैं। जब हम किसी का नाम लेकर पुकारते हैं तो वो बंदा हमारी आवाज पे मतवज्जो होता है या नहीं? यानी आवाज की हिस तवज्जो को अट्रैक्ट करती है या तवज्जो में हरकत पैदा करती है, यानी तवज्जो उस तरफ मबजूल हो जाती है। जैसे ही मतवज्जो होने की सिफत में हरकत हुई, अब देखिए जरा किस सलीके से बात को वाजे किया जा रहा है कि मतवज्जो होने की सिफत में हरकत हुई तो कायनात ने आवाज देने वाली हस्ती की तरफ देखा। निगाह खुलने के बाद और अपने अलावा एक और हस्ती को देखा तो दो रुख मुनकशिफ हो गए। यानी मखलूक के सामने जब निगाह मुतहर्रक हुई आवाज की वजह से मतवज्जो हुए, तवज्जो के सिरे असर बसारत बेदार हो गई, बसारत एक्टिवेट हो गई, तो अपने अलावा एक और हस्ती को देखा। अब एक रुख तखलीक हो गया और दूसरा रुख खालिक हो गया। यानी मखलूक को दो रुख नजर आए, एक अपना आप और एक अपना खालिक, अपना मालिक, अपना परवरदिगार। ये तशरीहात उस वक्त ये अल्फाज नहीं थे, सिर्फ जहन में ये था कि एक मैं हूं और एक मेरा बनाने वाला। इन दोनों रुखों का तायुन, ये तायुन होना कि मैं मखलूक हूं और मेरा खालिक है, ये दो रुख मुतायन हो गए तो यही आलम अमर हो गया। साफ लिखा हुआ है, कोई आधा पीछा नहीं है, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता। हम पढ़ते तो हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं, क्या याद रखते हैं? जब तक आप ये नहीं करते कि ये दो रुखों का, जब आपको ये एहसास जाग उठे कि मैं मखलूक हूं, मैं मखलूक हूं, तो आप आलम अमर से रोशनास होना शुरू हो जाते हैं। इन दोनों रुखों का तायुन आलम अमर है। अब आलम अमर में जो कुछ हुआ, या निगाह ने जो देखा, उसमें चूंकि खुद तखलीक और खालिक मुफरद हस्तियां हैं, मुफरद यानी फर्द से है ये लफ्ज, मुफरद यानी सिंगुलैरिटीज में है, तखलीक भी और खालिक भी। तखलीक एज ए होल एक सिंगुलैरिटी है और खालिक एज ए एंटायरिटी एक सिंगुलैरिटी है। इसलिए आलम अमर की तमाम हरकात मुफरद करार पाई। देखें कैसी कि आलम अमर की तमाम हरकत मुफरद हैं, वो जो अकैरी ले रहे हैं और ये वो, ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उस स्टेज पे यानी आलम अमर का तायुन होने के साथ ही ये चूंकि दोनों हस्तियाँ मुफरद हैं, लिहाजा आलम अमर की तमाम हरकत भी मुफरद हो गई। अब आलम अमर में दो हरकत हैं, आलम अमर में दो हरकत हैं जिनमें कोई रंग नहीं है। अब ये बात समझाने के लिए कि रंग नहीं है यानी उसमें वेव्स का अभी ताल्लुक नहीं है, और ये दोनों हरकत नफी हैं, यानी ऐसा आलम जिस आलम में बेखबरी के सिवा, बेखबरी के अलावा कुछ नहीं है, और ये दोनों आलम असल में क्या हैं? लतीफ़ खफी और लतीफ़ अख्फा से मुताल्लिक हैं। बताइए, बात वहीं आई ना रूहे आज़म पे, कि ये आलम अमर का ताल्लुक हमारे लतीफ़ नफ्सी और लतीफ़ खफी और लतीफ़ अख्फा से है, यानी रूह आज़म से, और यहां पे कोई रंग नहीं है। और साथ में ये भी बताया कि ये दोनों हरकत नफी हैं, यानी वहां पे कोई चीज नहीं है, बेखबरी है, कोई दावा नहीं है कि मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। लतीफ़ अख्फा आलम अमर खास है और लतीफ़ खफी आलम अमर आम। अब ये आलम अमर की दो किस्में हो गई, क्या? आलम अमर खास और आलम अमर आम। लतीफ़ खफी आलम अमर आम है, ये तख्लीक की बिसात है, और लतीफ़ अख्फा आलम अमर खास खालिक की जात है, आलम अमर खास खफी से कश्फ होता है। और यहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ है, आलम अमर खास अख्फा से कश्फ होता है, और लतीफ़ खफी कायनात का रिकॉर्ड है, और लतीफ़ अख्फा तजल्लियात का रिकॉर्ड है। लतीफ़ खफी कायनात का रिकॉर्ड है और लतीफ़ अख्फा तजल्लियात का रिकॉर्ड है, और ये दोनों लताइफ मौजूदात की असल है, मौजूदात की असल है। अख्फा किसी नौ के तमाम अफराद की असल है। इसकी मिसाल दरख्त का बीज है, इसकी मिसाल दरख्त का बीज है। जब हम दरख्त का तज़करा करते हैं तो हमारा ज़हन दरख्त की नौ और उस नौ की असल की तरफ जाता है। तो हम जब जमीन में बीज डालते हैं, जब हम जमीन में बीज डालते हैं तो बीज दरख्त बन जाता है। अब ये बीज इस दरख्त की असल है, लेकिन जब हम दरख्त की पूरी नौ का तज़करा करते हैं तो हमें उस बीज का तज़करा करना पड़ेगा जो सबसे पहले बोया गया था, वही एक बीज जो बीजों का बाबा आदम है, हजारों लाखों दरख्तों से गुजरकर आज भी दरख्त बन रहा है। यूं कहना चाहिए कि आम के दरख्त की नौ और उस नौ के तमाम अफराद की असल वो बीज है जो जमीन में बोया गया था। उस बीज के नस्मे में ऐसी हरकत है जो आगाज भी रखता है और जिसका अंजाम भी है, और ये हरकत आगाज से अंजाम की तरफ बढ़ रही है, गुरेज कर रही है। हर नौ का पहला बीज नौ का पहला फर्द है। ये बीज की मिसाल को बहुत तवज्जो से समझें कि बीज एक फर्द है और इस फर्द का बाबा आदम था, वहां से वो पूरी नौ बन रहे और नौ से फिर आगे अफराद बन रहे। गौर करें, एक फर्द था वो बाबा आदम बीज जो है, जो पहला बीज है वो पूरा बाबा आदम है उस दरख्त का, उस बीज का। आगे वो पूरी नौ को तश्कील दे रहा है और पूरी नौ जो है आगे अफराद को तक बनाए जा रही है। पर ये आलम में अमरे आम की मिसाल दी जा रही है, ये बात जहन में रहे क्योंकि ये कायनाती निजाम है। आलम में अमरे खास ये असल में शख्स असगर को कहा गया है, और चूंकि ये बराह रास्त तजल्लियात से आरास्ता है और यही वो चीज है जिसको नफख्ता फी है मिनर रूही, अल्लाह ने जो देखे ना कौन कहकर सारी कायनात बनाई लेकिन इंसान में अपनी रूह में से कुछ फूंका। जब इंसान में अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ फूंका तो वो आलम अमरे खास बन गया, वो खास कारिंदा बन गया। इसलिए ये सारी बातें इंसानों को समझाई जा रही हैं, आदमियों के लिए इसमें कोई चाम नहीं। इंसान को ये बातें समझनी है ताकि वो खलीफातुल्ला के लिए तैयार हो सके, ये वो सिलेबस है। आलम अमरे आम के कुन कहने के बाद जो सारी कायनात वजूद में आई, ये सारा आलम अमर है। और जब अल्लाह रब्बे करीम ने अपनी रूह में से कुछ मुंतकिल कर दिया, फूंक दिया, तो वो बंदा शख्स असगर बना। अब वो बंदा यानी हजरत आदम जो हैं वो अपने ही जगह एक फर्द थे लेकिन पूरी नौ को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्हीं से पूरी नौ बनी, और आगे उस नौ में अफराद हैं। ये निजाम को समझें, यानी के हर फर्द बनी नौ आदम का, हर फर्द आदम का सीड होने के नाते खलीफातुल्ला बन सकता है। यही बात कही है हजूर कलंदर बाब औलिया ने भी, कुरान ने भी, हजूर मुर्शिद करीम भी यही इरशाद फरमा रहे हैं और हम इसी बात का मुतालिया कर रहे हैं कि हर नौ का पहला बीज, नौ का पहला फर्द है। अब नौ के हेओले में बात चल रही थी अखफा और खफी की, तो उसके हेओले में पहली हरकत अखफा है और नोई हेओले की दूसरी हरकत खफी है हेओले में। और अखफा की निगाह हमेशा पर्दे के पीछे देखती है, यानी ये उसकी तबीयत है, ये उसकी खासियत है कि वो चीज को देखती है तो उसके पीछे चीज एक पर्दा बन जाती है। मैं आम लोगों के लिए कोई भी चीज आप देखते हैं तो वो पर्दा बन जाती है, उसकी नजर वहीं टिक जाती है सतह पे। लेकिन ये जो अख्फा की निगाह है वो पर्दे के पीछे देखती है कि ये किस तरह से बनकर इस हालत में पहुंचा, और खफी की निगाह पर्दे के ऊपर देखती है। अब पर्दे के पीछे देखने से मुराद तखलीक से बाहर गैब में देखना है, और पर्दे के ऊपर देखने से मुराद है आलम में मजाहिर में देखना है। अब इसको एक सादा सी मिसाल से देखें, अगर मैं और आप एक सोफा बना हुआ देखते हैं तो हमारी निगाह सोफे के ऊपर मढ़े हुए कपड़े पे रुक जाएगी। लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं, जिन लोगों ने ये कारीगरी की हो, सोफा बनाया हो, तो वो देखते ही पर्दे कपड़े की क्वालिटी से आगे बढ़कर देखेंगे कि इसके अंदर कैसा मटेरियल लगा है, इसके स्प्रिंग कैसे हैं, इसका ढांचा कैसा बना हुआ है। गौर करें, ये मैंने मिसाल दी है, ये बड़ी छोटी मिसाल है। अब इसी बात को आप ऊपर बड़े कामों पे इस्तेमाल करके देखें कि मजाहिर को देखकर वो उसके पीछे गैब में देखने की सलाहियत से मुत्तसिफ हो जाते हैं, या गैब की सलाहियत, गैब में देखने की सलाहियत रखते हैं। यानी ये आलम अमरे खास के बंदे की बात बताई जा रही है, क्योंकि अख्फा और खफी का जिक्र चल रहा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ आसमानों और जमीनों में है अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, और वो जबरदस्त हिकमत वाला है, उसी की सल्तनत है, आसमानों और जमीन को वही हयात देता है, वही मौत देता है, वही हर चीज पर कादिर है। उसने आसमान और जमीन को 6 रोज में बनाया, फिर तख्त पर कायम हुआ, वो सब जानता है और जमीन के अंदर दाखिल होता है, और वो सब जानता है जो जमीन के अंदर दाखिल होता है, और जो चीज इससे निकलती है, और जो चीज आसमान से उतरती है और उसमें चढ़ती है, वो दाना और बीना है, वो जाहिर है, वो बातिन है, वो हर आन हर लम्हा अपनी मखलूक के साथ रहता है। मखलूक किसी भी सियारे की हो या किसी भी जमीन की हो, वो सब को देखता है, जो कुछ मखलूक करती है उसके इल्म में है। अब यहां पे एक छोटी सी गलती और समझ लीजिए, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। यहाँ पे ये इस्लाह कर लीजिए, अगर अल्लाह हुक्म दे तो काम कैसे ना हो, लेकिन अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, इसलिए इंसान जो कुछ करता है उसका इल्म अल्लाह के, उसका इल्म अल्लाह को होता है। तो जो कुछ मखलूक करती है उसके इल्म में है। आसमान, आसमानों और जमीन की हुक्मरानी पर अल्लाह मुहीत है, और जो चीज जमीन व आसमान में मौजूद है वो सब अल्लाह की तरफ लौट जाएगी। अल्लाह ताला के इरशाद पर तफक्कुर किया जाए तो बहुत सारी बातों का इंकशाफ होता है। ये जो हमने आयात का तर्जुमा पढ़ा, अब देखें कि हमने जब ये किताब पढ़ रहे हैं तो इन आयात के मफहूम में ज़्यादा वसत महसूस हो रही है, वरना हम ये आयात पढ़ते थे और हमें इसकी प्लेसमेंट समझ में नहीं आती थी। लेकिन इस किताब की वजह से, मुर्शिद करीम की इस मेहनत की वजह से ये हुआ कि जब हम ये तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें कोई गहराइयां हैं, इसमें कोई बात बड़ी गहरी बताई गई है। अल्लाह ताला के इरशाद पर तफक्कुर किया जाए तो बहुत सारी बातों का इंकशाफ होता है। आसमानों और जमीन में जो कुछ मौजूद है पाकी बयान करते हैं, ये तर्जुमा है। मफहूम ये है कि जमीन और आसमान में कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो शऊर ना रखती हो। अब ये जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, पाकी बयान करते हैं, ये उसको कैसे निगेट कर दिया कि मफहूम ये है कि जमीन और आसमान में कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो शऊर ना रखती हो। मखलूक न सिर्फ अपनी जात का शऊर रखती है बल्कि ये भी जानती है कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह, और यही वजह है कि जमीनों और आसमानों में मौजूद हर चीज अल्लाह की पाकी और अजमत बयान करती है। यहां पे मैं आपकी साथ ये तला शेयर कर रहा हूं, सभे लिल्लाह माफ समावाते व माफ लर, सभे लिल्लाह। अब हमने सभे का तर्जमा तस्बीह करना, पाकी बयान करना किया हुआ है, हालांकि इसका असल मतलब है ड्यूटी परफॉर्म करना, तो लिहाजा वो तर्जमा भी करेक्ट हो जाए तो फिर आपको देखिए कि ये सारी बात समझ में आएगी कि ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए शऊर रखना जरूरी है। ठीक है, जमीन और आसमान में कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो शऊर ना रखती हो। मखलूक को क्या शऊर हासिल है, न सिर्फ अपनी जात का शऊर रखती है بلکہ یہ بھی جانتی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے. یعنی وہ جو پیچھے دو چیزیں, جب وہ الستو بربکم پوچھا گیا تو کیا ہوا, دو رخ منکشف ہوئے, یہ دونوں رخوں کا ادراک ہوتا ہے. تو یہی ڈیوٹی کا آغاز ہوتا ہے, اسی کو پاکی کے لفظ سے مترجمین نے لکھا ہے اور حضور مرشد کریم نے اس کا اصل مفہوم بتا دیا کہ مخلوق شعور رکھتی ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے, یعنی ساری مخلوقات, چاہے وہ چڑیا ہے, چاہے وہ کوا ہے, کبوتر ہے, چیونٹی ہے. قرآن میں صاف ہے کہ بھی حضرت سلیمان سے چیونٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے, جنات ان کے تابع ہیں. ہم یہ قرآن میں وہ تو وہ تھے جی, ان کی مثالیں دے کے اللہ رب کریم باتیں وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ صلاحیتیں سب انسانوں کے اندر ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم اس کو کیا اتنا وقت دے رہے ہیں جتنا کہ ہم ایک ایم بی بی ایس کرنے کے لیے جتنا زور لگاتے ہیں, کتابیں رٹتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ہم اتنا زور نہیں لگائیں گے تو بنے گا بھی تو کچھ نہیں نا. یہی وجہ ہے اچھا کہ زمین اور آسمانوں میں موجود ہر چیز اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتے ہیں, یعنی اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں. اللہ کی حکمرانی سب پر ہے, اس کے قبضے اور قدرت میں پیدائش اور موت ہے. کوئی پیدا ہونے والی چیز اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ ایک دن اسے موت کا مزہ چکھنا ہے, جبکہ ہر نفس اور ہر ذی شعور یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر موت وارد نہ ہو, لیکن موت آ جاتی ہے. موت کا وارد ہونا جب لازم بن گیا تو موجودات کے ہر فرد کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس کو سہارا دینے والا اور پیدا کرنے والا, اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا اور تخت پر قائم ہوا. یہ نزول و صعود کے 7 درجے ہیں. کیا بتایا کہ یہ جو 6 روز میں پیدا کیا اور تخت پر قائم ہوا, ثم استوى على العرش, یہ اصل میں نزول و صعود کے 7 درجے ہیں. اللہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے یعنی نزول کرتی ہے, اللہ جانتا ہے جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے یعنی صعود کرتی ہے. آسمانوں سے زمین پر آنا اور زمین سے آسمانوں پر چڑھنا نزول و صعود کی 2 حالتیں ہیں. جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, سب اللہ کی سلطنت ہے. سلطنت کا مطلب کہ اللہ کے کنٹرول میں بھی ہے, اللہ کا پورا نظام حاکمیت کا جو ہے وہ ان پہ حاوی ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی دسترس میں ہے. زندگی کا ہر لمحہ ایک طرف نزول ہے تو دوسری طرف صعود ہے. نزول و صعود میں سفر کرنے کے لیے اولیاء اللہ نے 6 رخ متعین کیے. یہ اصطلاحات جو ہم پڑھنے لگے ہیں یا پڑھتے آ رہے ہیں, یہ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے صوفیاء کرام نے, اولیاء اللہ نے ایک اپنا ٹرمینالوجی ایجاد کی. کیونکہ یہ بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے جب آپ کسی کو اصلی علم سکھانے بیٹھ جائیں, تو وہ جو اس علم کو نہیں جانتے وہ اس کی مخالفت پہ للہی بغض کی وجہ سے بس آمادہ ہو جاتے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے صوفیاء کرام نے اور اولیاء اللہ نے بات کو ایسے بیان کیا کہ خاص ذہن رکھنے والا بندہ اس کو سمجھے. تو نزول و صعود میں سفر کرنے کے لیے, نزول و صعود میں سفر کرنے کے لیے اولیاء اللہ نے 6 رخ متعین کیے ہیں. ہر رخ ایک حرکت ہے, ہر رخ ایک حرکت ہے. ان 6 رخوں یا 6 हरकतों का नाम लताइफ सित्ता है। अब मुझे बताएं कि ये जो हम दायरे बनाकर कोई एक माथे पे चिपका रहा है तो कोई सीने पे दाईं तरफ लगा रहा है तो बाईं तरफ लगा रहा है तो पेट पे लगा रहा है, क्या ये है? या ये जुमला जो मैं मुर्शिद करीम का तहरीर करता है कि हर रुख एक हरकत है, इन छह रुखों या छह हरकतों का नाम लताइफ सित्ता है, ये छह हरकतें हैं। नंबर एक लतीफा अख्फा, नंबर दो लतीफा खफी, नंबर तीन लतीफा सिर्री, लतीफा रूही और लतीफा कल्बी, और छठा है लतीफा नफसी। हर नौ में हर हरकत एक तूल रखती है। इन छह हरकात में से तीन हरकात नजूली हैं और तीन हरकात सऊदी हैं, यानी तीन ऊपर से नीचे को आ रही हैं और तीन नीचे से ऊपर को जा रही है। ये तीन नजूली हरकात के मुकाबले दूसरे रुख पर तीन सऊदी हरकात बयक वक्त, बयक वक्त यानी उसी वक्त, इधर नजूल होता है उधर सऊद होता है, तीन सऊदी हरकात बयक वक्त वकू में आती। अख्फा की बेरंगी तमाम रंगों की असल है। मेरा ख्याल है यहीं रुक जाते हैं जी। तो आज का हमने जो मजमून पढ़ा बरज़ख व एराफ, आप कहेंगे अभी तक तो कहीं नाम ही नहीं आया बरज़ख व एराफ का, इतना मजमून पढ़ लिया हमने, ये नजूल व सऊद को वाजे किया जा रहा है कि जब तख्लीक के दो रुख मुतय्यन हो गए, हमें यह एहसास हो गया कि हम मखलूक हैं तो जाहिर है कि हमारा खालिक भी है। जब यह एहसास हो गया तो यह एहसास आपके लतीफ़े अख्फा और खफी में हुआ, यानी रूह आजम में हुआ। उसके बाद के निचले दर्जात हैं, फिर अभी उसकी बात आएगी। यहाँ पे बीच में अल्लाह तबारक व ताला की कलाम की जो आयात हैं उनकी चंद हिकमतें इशारातन हजूर मुर्शिद करीम ने वाजे कर दी, इशारातन बता दिया कि सभी का मुराद है कि शऊर रखना यानी ड्यूटी परफॉर्म करना, और दूसरा जो है ये जो नजूल व सऊद है ये इनके छह दर्जे हैं, छह रुख हैं और उनके छह नाम हैं, और ये नाम हमें याद करने हैं। और इन छह नामों से तीन चीजें बनती हैं, जैसे रूहे इंसानी और सॉरी रूहे आजम, रूहे इंसानी और रूहे हैवानी कहा जाता है। तो ये सारा हमारा जहन बनाने के लिए किया जा रहा है, अल्लाह करे कि ये बने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया के, बहुत नवाजिश, आपका शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।